संतप्त मानस शांत हूँ, जिनके गुणों के गान में विवर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में। पेज नंबर 194 निकालो, 194। एक पेज पीछे से देख लें, 93 से नीचे के दो पैरे। ये निष्कर्ष है कोई पिछली गाथा का। इस प्रकार हमने स्वरूप अस्तित्व को छोड़ा नहीं है और हम सादृश अस्तित्व में भी शामिल हैं। हम ऐसी महासत्ता के अंश हैं जिसमें स्वरूप अस्तित्व को छोड़ना जरूरी नहीं है। मैं अपने स्वरूपास्तित्व में भी शामिल हूं और सादृश अस्तित्व में भी शामिल हूं। इस प्रकार सभी जीव द्रव्य सादृश अस्तित्व एवं स्वरूपास्तित्व से युक्त हैं। सभी का अस्तित्व समान है। आप भी अनंत गुण वाले हो और मैं भी अनंत गुण वाला हूं। पुद्गल भी अनंत गुण वाला है। आप भी गुण पर्याय से युक्त हो और मैं भी गुण पर्याय से युक्त हूं। महासत्ता की अपेक्षा हम तुम सभी एक हैं, एक से हैं। अतः इस अस्तित्व का नाम सादृश्य अस्तित्व है। ये पिछली गाथा में जो उन्होंने बताया, अस्तित्व दो प्रकार का होता है और स्वरूपास्तित्व का महत्व इसलिए है क्योंकि उसके आश्रय से संबंध असंग की प्राप्ति होती है और वह हम स्वयं हैं। सादृश्य अस्तित्व में जो अनंत पदार्थ हैं उनके साथ हमारा एकत्व किसी अपेक्षा से है, पर उनके साथ हमारा दुख सुख कुछ बंधा नहीं है। कोई दूसरा जीव दुखी होगा तो हम भी दुखी होंगे, ऐसा नहीं है। क्योंकि जब जब ये सादृश्य अस्तित्व की अपेक्षा बातें बताई जाती हैं, की जाते हैं, एक तो महासत्ता और बीच में बताई थी ना बहुत हम सब जैन हैं, हम सब हिंदू हैं, हम सब भारतीय हैं, हम सब राजस्थानी हैं। जब जब इनकी चर्चा होती है तब तब हमारे और आपके हित एक से हैं, इस मुद्दे को ही उठाया जाता है। यदि सफाई का मामला है तो जयपुर शहर साफ हो जाएगा तो उसका फायदा अकेला आपको ही नहीं होगा, हमें भी होगा, हमें ही नहीं होगा, आपको भी होगा। इसे बोलते सबके हित की बातें हैं। इसमें हम एक मत हैं, इसलिए हमें एक मत रहना चाहिए। मेरे कहने का मतलब जितना भी संगठन वाले पॉइंट हैं, एकता वाले पॉइंट हैं, वे सब इस सादृश्य अस्तित्व पर आधारित हैं। बस मुद्दा एक सादृश्य अस्तित्व ही है। अब हम कहें हमारे सुख दुख एक साथ नहीं हैं, तो फिर वो सादृश्य अस्तित्व का महत्व खत्म हो जाता है। हम कहते मेरा सुख दुख मेरे साथ है और तुम्हारा सुख दुख तुम्हारे साथ है, क्यों भी क्या है, क्यों उपयोग कहां भ्रष्ट हो रहा है ना। तो हमसे तुम्हारा कोई संबंध नहीं, तुमसे हमारा कोई संबंध नहीं। सगे दो भाई जुड़वा भाई पैदा होते हैं और एक नरक जाता है और एक मोक्ष चला जाता है और जीवन भर बहुत प्रेम से रहते हैं और पुण्य पाप जो भी करते हैं वो सब एक साथ ही करते हैं, पूरी सम्मति मिला के ही करते हैं। और ये ऐसी बात नहीं है कोई एकाध घटना घट गई हो। अपने जैन दर्शन में तो कुछ बातें परमानेंट हैं। जैसे क्या परमानेंट है कि नारायण और बलभद्र भाई भाई होंगे, हैं? प्रति नारायण होगा, उसके 18,000 रानियां होंगी, नारायण के 16,000 होंगी, बलभद्र के 8,000 होंगी, सब नक्की है। उसने कुछ नहीं किया है तो उसने 8,000 शादियां की, हैं? मतलब अकेला एक करने के लिए होगा और एक करेगा, जो होंगे वे सब करेंगे, और कौन होंगे वे भी नक्की, और वे उनके नाम भी नक्की, और ये भी नक्की कि वे पिछले भव में निदान बंद करेंगे। अब बचा क्या, हम कहानी लिखें क्या, हमें लिखने को बचा क्या? तुमने पूरा खाका तो खड़ा ही कर दिया, क्योंकि वो नरक ही जाएगा, हम उसे स्वर्ग भेज नहीं सकते, हैं? ये जब हमारी बुद्धि कहां जाती है, जब हम प्रथमानी योग पढ़ते हैं और उसमें से हमको ये नहीं करना चाहिए, ये करना चाहिए, इससे ये शिक्षा मिलती है, श्री कृष्ण से हमको ये शिक्षा मिलती है, फलाने से ये शिक्षा मिलती है, क्या शिक्षा मिलती है श्री कृष्ण से? अरे हजारों नारायण हो गए हैं और हजारों होंगे और सब नरक जाएंगे, वे नहीं सुधरेंगे, हम क्या सुधर जाएंगे? और वे पिछले भव में क्या करेंगे, निदान बंद करेंगे, उसी के बल पे होंगे, कितनी पत्नियां होंगी अभी नक्की है, लिखा है तो कौन कौन होंगी वो भी नक्की, लिखते कैसे यार 16,000 के नाम, और लिख देते तो तुम पढ़ते क्या, 24 शंकरों के नाम तो हमें याद नहीं होते, 12 चक्रवर्तियों के नाम किसे याद है, बोलो? घबराना नहीं, मुझे भी नहीं। किसको फुर्सत है, हैं? अपने प्रयोजन भूत कार्य में लगे ना हर एक आदमी, हैं? ये समझ हजारों नाम याद कर करके हम क्या करेंगे, हमको नहीं है पता तो बहुत बड़ी गलती है, ऐसा कुछ नहीं है। माने हमारे सारे पुराण शास्त्रों का एक ढांचा पूरा खड़ा हुआ है, तीर्थंकर होंगे तो वे नक्की हैं, कौन होंगे तो उनके 5 कल्याणक होंगे, गर्भ कल्याणक, जन्म कल्याणक, दीक्षा कल्याणक, माता को 16 सपने आएंगे, वही सपने आएंगे। एक महिला स्वप्न देखने में भी तो आजाद नहीं है, वो भी तीर्थंकर की मां जैसी विशिष्ट महिला। क्या क्या मैंने क्या कहा सुना आपने? कोई साधारण महिलाओं को तो पूछता कौन है, वो तो लेन लगा के खड़े ही देना पड़ेगा उन्हें तो, हैं? लेकिन इतनी विशिष्ट महिला जिसके लिए हमारे मानतुंगाचार्य को लिखना पड़ा कि तेरी माता, क्या बोलो बोलो 22वां छंद, मैं पूछता हूं मानतुंगाचार्य से, उन्हें मालूम नहीं था कि 24 तीर्थंकर होंगे और वो 24 माताएं होंगी उनकी, और वे भी मरुदेवी से कम नहीं होंगी, मतलब जो मां का नाम नहीं था, ऋषभदेव की मां का नाम मरुदेवी था ना, तो वे भी एक से एक बढ़के ही होंगी ना, बस एक ही है तुम्हें ही हो, जिसकी जिसके गीत गाएंगे उसको तू ही है, एक ही है, वो स्टाइल से उसकी तरीका वो सब नक्की है। वो इंद्र नचेगा और वो मातांडव नृत्य करेगा और वे लोकांतिक देव आएंगे और वे समझाएंगे, क्या हम करें, क्या करने को छोड़ा क्या है? जैसे बच्चों को वो चित्र बना दे, चित्र की किताब होती है ना, और उसमें ऐसे लाइन खींच खींच के चित्र बना देते हैं और फिर कहते हैं बस बेटा इन्हें रंग भरा, और रंग होते हैं बस रंग भरते ना, रंग भर दो, उसने चित्र बनाया क्या है? यानी वो खाका पूरा हमारे यहां जैन दर्शन में सुव्यवस्थित है, उसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते, है? ये तो एक बात नक्की नहीं है कम से कम कि तीर्थंकर के भी इतनी पत्नियां होती हैं और वे अवश्य होना चाहिए, नहीं तो जो चार पांच बाल ब्रह्मचारी हो गए वे एक भी बाल ब्रह्मचारी नहीं होता। मेरे कहने का मतलब यह है कि ये सब चीजें इतनी व्यवस्थित हैं और ये सब हमको क्या बताती है, कहने शिक्षा लेनी है ना, तो यही लो ना, सब पूरी तरह व्यवस्थित है, अब कुछ करना बाकी नहीं है, कुछ नहीं छोड़ा है उनने हमारे लिए। अपन जाए किसी की शादी में और सब बहुत बढ़िया व्यवस्था हो, तब आजकल तो प्रोफेशनल होते हैं, उनको सौंप दी जाती है तो वे बराबर एक एक चीज कहां रखना, कैसे करना, क्या करना, सब व्यवस्थित करते हैं। फिर अपन जाते हैं और अपने एक पद्धति है कि घर के वो मालिक से कहते हैं हमारे लायक सेवा कोई हो तो बताओ, वो भी एक पद्धति, वो भी अपना सिस्टम नक्की है, हिन्दुस्तान में सब नक्की है। उनका जवाब भी नक्की है, जैसे कहीं ट्रेनिंग लेके आए हो दोनों जने, क्या आप तो बिरा दो, सब बढ़िया है, खुदा है बस, आप बिरा जाओ, आप तो एक निगाह डाल दो देख लो, क्यों चाह रहा हूं भैया, ये जवाब भी नक्की है, प्रश्न भी नक्की है, सब व्यवस्थित नक्की है, हमें तो सर्व खाका भरना है। रोडामल जी ने लिखा है मुख्यमंत्री प्रकाशक में कि बाकी कवि के लिए कल्पनाओं के लिए जगह छोड़ी है उनने, वो तो सब नक्की कर दिया कि वो कैसी होगी क्या होगी, और फिर उन्होंने बता दी चोटी कैसी होगी और नाक कैसी होगी, इसके बारे में तुम आजाद हो, जो कुछ भी तुम्हें कल्पना करना हो तो कर डालो। तो उनने भी कल्पनाएं ऐसी की कि यदि उनके वर्णन के हिसाब से किसी महिला का चित्र बना दें तो वो एक डायन से कम नहीं लगेगी। आप सोचो नागिन जैसी छोटी, तो इसके माथे पर एक नागिन रहती है, कहीं कर दे तो कैसे कैसी लगेगी महिला पर। मेरे कहने का मतलब यह है कि सब अत्यंत व्यवस्थित है, ये सब जगह से निकलता के नहीं, मैं आज नहीं कह रहा हूं, जब क्रमबद्ध पर्याय पर मैंने बोलना शुरू किया था उस दिन से ये कह रहा हूं कि हम तो सारे चारों नियोग पढ़ते हैं तो ये कहते कहां लिखी, हम कहते कहां नहीं लिखी, एक बात पे लड़ते हो कि कृमि नियमित शब्द है या क्रमबद्ध शब्द है, अरे कुछ भी होगा लेकिन सब जगह बताया हुआ है, हैं? और उस मूल खाके में हम कोई परिवर्तन कहीं से भी कुछ भी नहीं कर सकते हैं। समोसराण में भगवान को केवल ज्ञान हो गया, अब दिव्यध्वनि खड़ेगी तो उसमें तो हम अपनी अकल लगाएंगे, लगा सकते हैं ना, क्यों शांति जी कुछ है आजादी, उसमें भी नक्की है सब वस्तु का स्वरूप, जो अरहंत आदिनाथ ने बताया था वही अजितनाथ ने, वही संभवनाथ ने, सबसे बड़े नकलची तो हमारे तीर्थंकर हैं। बिल्कुल वही की वही बातें, वही की वही बातें, और फिर भी ओरिजिनल, फिर भी मौलिक, क्योंकि वो पुराना सब खत्म हो जाता है फिर नया उनसे स्टार्टिंग होता है, तो उनने जो बताया वो सही, लेकिन फंडामेंटल में कोई फर्क नहीं डाल सकते। अब मैं ये पढ़ रहा था जो आपको जिस वजह से ये बात कह रहा हूं कि सादृश्य अस्तित्व और स्वरूप अस्तित्व, तो हमको सादृश्य अस्तित्व में जब हमको एकता करनी हो पर से, जो कि पर बिल्कुल हमसे बिल्कुल भिन्न है, जो अध्यात्म दो द्रव्यों को बीच में वज्र की दीवार खड़ी करता है, वो सारा कथन उसके विरुद्ध दिखाई देगा। लोग कहते हैं मैं सिद्धम्बर एक ही है भैया, क्या फर्क है, एकता की बात करनी है ना, हिंदू हिंदू मुसलमान में कोई फर्क नहीं है, वो ईश्वर को जगत का कर्ता मानते, वो खुदा को मानते, क्या फर्क है? अरे बोलते हैं क्या फर्क है, कोई ना फर्क नहीं है, फर्क तो वास्तव में अपन से है ना, कौन हिंदू और मुसलमान और ईसाई एक हैं और हम अलग हैं, ये क्या बात कर रहे, ऐसा मत बोल मत देना, किसी धर्म सभा में बाहर बोल मत देना, नहीं तो ये तीनों मिलके एक साथ होकर के तुम पर आक्रमण करेंगे तो पता ही नहीं चलेगा कि तुम कहां हो कि तुम हो के हो ही नहीं है? बोलो, लेकिन फैक्ट ये है ना, मैं एक सच्ची घटना बताता हूं। आज से 49 वर्ष पुरानी है तारीख, बाद बता सकता हूं। उज्जैन में उन्होंने कोई 12 दिन का शिविर लगाया था, तब मैं यहां नहीं आया था, इंदौर में था, तो मैं 49 वर्ष पहले इंदौर में था, तो मैं इंदौर से वहां गया था, तभी बबलू है ना दादा का, ये करीब 1 साल का होगा, तब की घटना है। तो वहां पर प्रवचन हो रहे थे, फिर एक पब्लिक मीटिंग रखी, हिंदू मुसलमान सबको बुलाया, वही रखा, तो इस विषय पे बातचीत आई, तो मैंने कहा क्यों मत पर जाए, इस सबके क्या करे, इस हिंदू मुसलमान को सुनाओगे, कहा सुनाएंगे, आप चिंता मत करो, बस आपने चुन लिया ना मुझे वक्ता, अब मेरे पे छोड़ दो, सब्जेक्ट भी मुझे वो क्या बोलेंगे कैसे बोलेंगे, फिर मैंने मानो क्या समझाया कि सबकी समस्या ये है, हमने एक दूसरे को कर्ता मान रखा है, हिंदुओं को भी ये बात पसंद नहीं है, ये उनके यहां भी अज्ञान है, मुसलमानों के यहां भी अज्ञान है, क्योंकि वे ये कहते हैं कि राम की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता, तो फिर राम की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलेगा, तू कौन होता है बीच में, तू चाहता तेरी मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिले, तू अपने हाथ में अधिकार चाहता है ना, तो हिंदू धर्म वालों को भी एक समस्या है कि तुम राम की सत्ता को चैलेंज कर रहे, मुसलमान खुदा की सत्ता को चैलेंज कर रहे, ईसाई गॉड की सत्ता को चैलेंज कर रहे, जैनी किरमत पर्याय को चैलेंज कर रहे, पर सबकी समस्या एक ही है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं है, ख्याल में आई ना, और हम तुम्हारे कर्ता नहीं, तो तुम्हारे तो एक दूसरे का हो गया ना, ईश्वर हुआ तो वो दूसरे ही तो होगा, लेकिन उनकी समस्या ये नहीं है, ये तो हम कह रहे अपनी, वो तो कहते हैं भगवान की मर्जी के बिना कुछ नहीं होगा, हम कहते हैं बस नक्की है अनादि से, सिर्फ इतना ही से तो फर्क है, लेकिन तुम कुछ नहीं कर सकते हमारा, और हम तुम्हारा कुछ नहीं कर सकते, कोई किसी का कुछ नहीं कर सकता, ख्याल में आए ना, इस मामले में सभी एक मत हैं, और मैंने इस पॉइंट को लेकर के 1 घंटे इतना बढ़िया बोला कि लोग तालियां पटी 10 दफे तो, और एकदम के कौन है वे पंडित जी, कहां हैं और कैसे हैं, तो मैंने समझ लो कि क्या हो गया, सब आए थे, हिंदू मुसलमान नेताओं को बुलाया था ना सब उनके, तो वे लोग भी सब आए थे, सुनाया सबको, हमको ये डर लगता है कि हम मुमुक्षुओं में भी क्रमत पर आए बोलने में डरते हैं, गैर मुमुक्षुओं की बात छोड़ो, लेकिन मैं तो कहता हूं इतना बढ़िया सब्जेक्ट है, तुम कहीं भी बोलो कैसे, और ऐसा नहीं कि झगड़ा हो जाएगा, वो समझेगा हमारे विरुद्ध बोल रहे, विरुद्ध है क्या, और अपना एक काम हो रहा है ना, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं है, ये सबसे बड़ी समस्या है ना, ना आचार्य कुंदकुंद की, भगवान महावीर की कह लो, चाहे किसी की भी कह लो, हम यही बात को जो सिद्ध कर रहे हैं। अब वो झगड़ा कि सब कुछ नक्की है कि भगवान नक्की करेंगे, एक एक वो झगड़ा रहेगा हमारा हिंदुओं के साथ में, क्या माने, एक तो निबट गया कि हम और तुम दोनों नहीं करेंगे, जिससे असली झगड़ा होता है, जिसकी वजह से हम स्वार्थ में फंस जाते हैं, अब वहां तो एक ऐसा वो नक्की है कि राम करेगा कि खुदा करेगा कि अल्लाह करेगा कि गौर करेगा, तो झगड़ा तो उनमें है, लेकिन करेगा कोई एक महाशक्ति होगी, वो ही करेगी, वो ही है ना, उसको थोड़ा गौण कर दो। क्यों कैसे गौण कर दें? ऐसे कर दो कि तुम कहते ना राम की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता है, ठीक है, तुम काहे घबरा रहे, राम की मर्जी के बिना तो पत्ता हिलेगा ही नहीं, अकेला तुम्हारा नहीं हिलता कि हमारा भी नहीं हिलता। हम जैन हैं तो हिंदू नहीं हैं और हम राम को नहीं मानते, राम को तो मानते हैं लेकिन कर्ता नहीं मानते कि वो हमारे पत्ते वो हिलाए, ये अधिकार हम देने को तैयार नहीं है राम को। तो भी मैं आपसे पूछता हूं कि हमारे पत्ते राम की मर्जी के बिना हिल जाएंगे कि नहीं, बता। किससे पूछ रहे? राम भगत से। अरे तुमसे पूछते हैं, घबराना नहीं। हम मुसलमान से पूछते हैं कि हमारे पत्ते, हम खुदा को नहीं मानते हैं, हमारे पत्ते खुदा की मर्जी से हिलेंगे कि बिना की खुदा की मर्जी के हिल जाएंगे? बोले नहीं साहब, आप चाहे मानो चाहे नहीं मानो, आपका होगा तो वही जो खुद मंजूर है खुदा होगा। अच्छा, तो आप इंजीनियरों से पूछो कि साहब हम तो तुम्हारी किरमत पर्याय को नहीं मानते ना, तो हम तो नहीं बंधे किरमत पर्याय से। तुम मानने से भले ही बंधे ना हो लेकिन किरमबद्ध पर्याय तो तुम्हारी भी नक्की है, भगवान महावीर ने तो तुम्हारी भी जान ली थी, आदिनाथ ने भी तुम्हारी जान ली थी, समझ गए ना? वो जैनी अजैनी हिंदू मुसलमान कोई भी उससे बाहर नहीं है, ऐसा हर धर्म वाला कहता है। कहां झगड़ा होगा? तो ये कहते हैं कि बार बार आश्वासन देते हैं, सुनो कि तुम महासत्ता से इंकार मत करो कि नहीं साहब हमारा तो सब कुछ चला जाता है, महासत्ता हम उनकी मान ले, हम नहीं माने। वो कहते हैं तुम बिल्कुल आजाद हो, समझे मैं क्या, वो महासत्ता को स्वीकार कर लो, तुम्हारा स्वरूपास्तित्व में पूरे तुम हो मालिक, तो उसमें तो हमारी मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलेगा ना, अभी तो हम नहीं कह सकते हैं। तुम करोगे जो जो होगा तुम में उसके पूरे जिम्मेवार तुम होगे। क्या मतलब हुआ इसका कि उसे पुण्य बंधेगा, पाप बंधेगा, मोक्ष होगा, निगोज जाएंगे, क्या होगा, जो होगा वो तुमको ही भोगना पड़ेगा, जब तुमको ही भोगना पड़ेगा तो उसके कर्ता दूसरा कैसे होगा, करे कोई तो भोगे कोई, ऐसा तो हो नहीं सकता, ये तो नियम है, करे सो भोगे, क्यों? तो जब कहते हमारे स्वरूपास्तित्व में यदि कोई दखल नहीं है तो हमें तुम्हारी महासत्ता स्वीकार है, क्यों ख्याल है ना कि आप अपने जयपुर का विकास जैसा करना हो, वो जयपुर का मेयर है ना, वो पूरा करे ना, तो इसमें कोई केंद्र की सत्ता हस्तक्षेप करेगी और ना प्रांत की सत्ता हस्तक्षेप करेगी, बल्कि तुमको वो विकास करने के लिए सहयोग देगी, बजट देगी, बोलो क्या है? ऐसा ही है ना, तब तुम पूरे आजाद हो, तुम्हें कोई आजादी में फर्क है कि नहीं हमें नहीं चाहिए गुलामी, हमको नहीं मुख्यमंत्री की गुलामी चाहिए, हमको प्रधानमंत्री की गुलामी नहीं चाहिए, कि कहां है? तुम निर्णय करो, तुम्हारे जितने से मेंबर चुन के आए हैं वहां पास करो, और पास करो वो करवाओ, ऐसी आजादी तो हमारे सारे देश को मिली है ना, केंद्र के लेवल पे, प्रांत के लेवल पे, फिर गांव के लेवल पे, मोहल्ले के लेवल पे, फिर घर के लेवल पे। आपके घर में कौन हस्तक्षेप करता है? आप अपने घर को बहुत बढ़िया नीट एंड क्लीन चमका के रखो, वो चाहे जैसा गंदा कोई गंदा चाहे जैसा रखो, कौन तुम्हें कौन कहता है कि तुमने ऐसा क्यों किया? पूरे आजाद हो ना अपने घर में, तो भले ही वो 8x8 का ये कमरा ही हो है, लेकिन वहां तो उतने तो आजाद हो, ऐसी आजादी हो। अब हमने क्या कही कि तो हम आपको उल्टा सहयोग करेंगे, तो यहां चूक गए हम। क्या 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 चूक गए? क्या हम सहयोग करेंगे कि क्या करोड़ों का बजट देंगे? अरे फिर तो क्या कहना, मर गए बेटा उसी दिन। अब उस दिन जब बजट लेने जाओगे तब भी अपनी शर्तें रखते जाएंगे, इसको ऐसा करना पड़ेगा, इसमें खर्च करना पड़ेगा, इसमें नहीं कर सकते, इसमें करना पड़ेगा। फिर उन्होंने तुम कह देते कि नहीं अब हम अपना विकास करेंगे तो हम ही करेंगे और हमें तुम्हारा सहयोग नहीं चाहिए, तो उस दिन तुम्हारी पूरी आजादी हो जाती। इस तरीके से हमारा घर बिक गया, गांव बिक गया, प्रांत बिक गया। क्यों? क्यों बस हरेक को कितना वो बना, बिहार को कितना पैकेज दे दिया, फलाने को कितना पैकेज दे दिया है, तो सबको वहां चक्कर काटना पड़ता है, नहीं लेते तो ये क्या करते हैं, ये कहां से देते हैं? ये हमारी ही जनता से ले जाते हैं क्या? हमारी ही जनता से ले जाते हैं। हम एक पंचर सुधरवाते हैं अपनी गाड़ी का, वो पंचर सुधारने वाला 50 रुपया लेता है, गवर्नमेंट कहती 50 हमें दो, कि तुझे काहे के कि इसने तुम्हारा पंचर सुधारा। अरे भाई इसको आजकल क्या क्या नाम है इस टैक्स का, सर्विस टैक्स। सर्विस तो उसने की है, तुमने क्या किया है? अब हमें उनसे पैसे चाहिए, जैसे हम गांव वालों से तुम ले गए फिर तुमने हमें दिया और हमको इतनी गुलामी में डाल दिया, और हम अपने गांव वालों से हाथ जोड़ के हमें ही उगा देंगे और हम अपना विकास करेंगे। यदि हमने उसी दिन ये बात कर ली होती तो इसी तरकीब से हमारा देश भी गुलाम हो गया। क्या हो गया? अमेरिका इतने अरब देगा, फलानी जगह इतने अरब देगा, फलाना देश इतना देगा है, उसे वो नहीं देगा। क्यों? तो वो कहते हम नहीं, मत दो, हमें नहीं चाहिए तुम्हारे। अरे हम कह रहे ले लो, नहीं लोगे तो हम वो सब पाकिस्तान को दे देंगे। बोलो हम तुमको दे रहे हैं 10 अरब रुपया, तुम सहयोग ले लो, हम कोई शर्त नहीं है, अपने गांव में बगीचा बनाना है, कुछ भी करना। कहीं हमें नहीं चाहिए तुम्हारा, हम नहीं बगीचा के ले लेंगे। ठीक है तो हम पाकिस्तान को दिए देते हैं। हमारा तो एक बजट है कि विश्व को मैं क्या करना, विकास है, क्यों हर दुनिया को बढ़िया ऊपर चढ़ा देना, हर शहर को बढ़िया बना देना, कौन सा बोलते हैं इसको है? हाँ जो भी हो रहा है बेकार पूछता हूं मैं, समझे ना? तो स्मार्ट सिटी ऐसी बोल रहे थे ना, तो वो हम नहीं बनना, हम बने स्मार्ट के अच्छे, तो इसको लिए पैसा देंगे फिर बस हमको गुलाम बनाएंगे। तो ये तुमके स्वरूपास्तित्व में महास्तित्व के साथ में ऐसा नहीं है, ये मैं कह रहा हूं। तुमको बिल्कुल भी कोई पाबंदी नहीं है। बोलो अब महासत्ता का सदस्य बनना के नहीं, तो बनना नहीं बनना तुम्हारे हाथ में नहीं है, वो तो तुम बने ही बनाए हो, हम तो तुम्हें सिर्फ बता रहे हैं ये वस्तु स्थिति ये है, इसलिए अपने चित्त में भी उसका विरोध आना जरूरत नहीं है। क्या है कि तुम बिल्कुल पूरे आजाद रहोगे, तो फिर हम वो महासत्ता को माने ही क्यों? क्यों बोलो, क्या जवाब दे रहे हैं? कुंदकुंदाचारी से पूछो, तुम माने ही क्यों? कोई हस्तक्षेप नहीं, कोई पराधीनता नहीं, कुछ भी नहीं। अरे भाई वो है ना, उसका अस्तित्व है ना जगत में, उसे नहीं मानोगे तो तुम्हारा ज्ञान झूठा हो जाएगा ना। काय के लिए मानो? क्योंकि वो है, वस्तु की स्थिति ऐसी है, ख्याल में आया ना? तो इसलिए तो हमको पराधीनता के बिना भी जिसका अस्तित्व है उसका अस्तित्व स्वीकार करना चाहिए कि नहीं? वो हमारा कोई हानि लाभ नहीं करता, कोई लेना देना नहीं है, लेकिन है ना। तो एक वो महासत्ता है, अभी दूसरी अवान्तर सत्ता है। तो पिछली गाथा में महासत्ता की बात करी, अब अगली गाथा में अवान्तर सत्ता की बात करने वाले हैं। देखो, इस प्रकार सभी जीव द्रव्य अस्तित्व, सभी जीव द्रव्य सादृश अस्तित्व एवं स्वरूपास्तित्व से युक्त हैं। सभी का अस्तित्व समान है। आप भी अनंत गुण वाले हो और मैं भी अनंत गुण वाला हूं, पुद्गल भी अनंत गुण वाला है। आप भी गुण पर्याय से युक्त हो और मैं भी गुण पर्याय से युक्त हूं। महासत्ता की अपेक्षा हम तुम सभी एक हैं, एक से हैं। अतः इस अस्तित्व का नाम सादृश्य अस्तित्व है। माने सादृश्य माने समानता बोलते होते ना, सादृश्य साधु एक सा होना। एक होने में भी जगत में एक है ऐसा व्यवहार किया कि नहीं? एक होने से होने में भी जगत में एक है ऐसा व्यवहार किया जाता है क्या? क्या हाँ, एक से होने पर। हाँ, कह रहा हूं क्या गड़बड़ हो गया। माने जब एक से होते हैं तो उन्हें भी लोक में एक ऐसा कहा जाता है, ये समझ लेना। उसका अर्थ एक से ही होगा। ये समझाने के लिए मैंने वो किसका बताया था, आकाशवाणी का, एक वहां पर थे मुरली मंजुल जिसका अधिकारी था, उसने मेरी से कहा हम सभी एक जैन एक हैं, हम में भी जैनत्व की श्रद्धा है और आप में भी जैनत्व की श्रद्धा है। सब कैसी बात करते हैं, दिगम सीताम एक कैसे हो सकते हैं, हम नहीं हैं, हम नहीं हैं। अरे भाई, वे भी अपने को जैन कहते हैं, तुम भी अपने को जैन कहते हो, उन्हें भी जैन धर्म सच्चा है, पक्का भरोसा है, तुम्हें भी जैन धर्म सच्चा है, पक्का भरोसा है, इसमें क्या दिक्कत है? देवी भगवान महावीर को मानते हैं, तुम भी मानते हो, देवी भगवान महावीर को सर्वज्ञ मानते हैं, तुम भी मानते हो, क्या दिक्कत है? कि नहीं, 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 वो कपड़ा पहने मानते, तो कपड़े की बात छोड़ दो, हम तो सादृश्यता की बात कर रहे हैं ना। क्या कि जिनमें लोक में ऐसे ही नेतागिरी चलती है कि देखो जिन बातों में अपने हित समान हैं उनमें हम एक साथ काम करें, कहते कि नहीं कहते हम? बोलो, अभी क्या जरूरत पड़ती है? अभी संलेखना का मामला आया, सब बिना प्रयत्न के एकदम एक साथ हो गए कि नहीं? किसी को कुछ करना पड़ा, किसी ने दूसरे से जाके कहा कि तुम आना जुलूस में, कि तुम भी कुछ करो, सारा जैन बच्चा बच्चा एक हो गया ना। क्यों? क्योंकि हम सबके हित एक से थे। ये कैसे बर्दाश्त हो सकता था? सवाल ये नहीं है कि हमारी संलेखना में क्या कितनी कमियां हैं, कितने दोष हैं, उन दोषों को हम ठीक करेंगे और उन ठीक करने के लिए हम लड़ेंगे, मरेंगे, अपने लोगों से सब कुछ करेंगे, लेकिन तुम्हारा हस्तक्षेप स्वीकार नहीं करेंगे। क्या एक हम कैसे मान सकते हैं कि हम कब क्या खाएं और क्या नहीं खाएं, ये भी पुलिस वाले देख के नक्की करेंगे? तो लाओ तुम माल, हम तो खिलाएंगे लाएंगे नहीं, खाएं हम अपने है? क्या है? और नक्की ये करेंगे कि खाएं कि नहीं खाएं। कितना बड़ा हस्तक्षेप है, बोलो। मैं तो कहा, कई सभाओं में कहा, देश विदेश में सब जगह, कि मुझे एक बात बताओ कि लाखों लोग भूखों मर रहे, गरीब लोग किसान मर रहे, तो ये गवर्नमेंट फिक्र नहीं करती है? उनके पास कोई जाता नहीं है कि उन्होंने कई दिन से नहीं खाया, और एक करोड़पति दो दिन भूखा रह गया तो इन्हें इतनी फिक्र हो गई? तो ये करोड़पतियों की सरकार है क्या गरीबों की? क्या तुम भूखे नहीं रह सकते? क्यों क्यों हो गई फिक्र इसको? इसलिए हो गई कि हम करोड़पति के घर जाएंगे, उससे कहेंगे तुम भूखे नहीं रह सकते हो, कि खा सकते हो या नहीं खा सकते हो, तो कुछ खाने को हमें भी मिलेगा, उन गरीबों के पास जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा समझ ये स्थिति है तो हमें इसके लिए लड़े मरे हैं, कोई संलग्न के लिए नहीं लड़ा मरा है। संलग्न किसी को नहीं करना है, संलग्न कोई जानते ही नहीं क्या होती है, संलग्न कैसे की जाती है, उसका क्या फल है, क्या स्वरूप है, किसी को कोशिश भी नहीं है। समझ में आएगा? फिर और कड़वी बात कह दू ना थोड़ी। पंडित जी हाथ जोड़ते हैं कि ये आपकी किताब है ना, आपको बांटना है ना, 1000 बांटना है, कितने पैसा लगेंगे? ये 5000, ये ले जाओ, माथा मत खाओ। क्या क्या किसे जी तुम इसे ले लो, तो पढ़ना इसे, देखो हमने कहीं भी माथा मत खाओ। ऐसे हजारों लोग हैं इस लोक में। मैं ये कहता हूं कि कोई आदमी ऐसा करना सर्वेक्षण जिसको उत्साह हो कि जिन जिन ने अपनी किताबें बांटी हैं उन उनसे जाकर के पूछना कि तुमने ये किताब पढ़ी कि नहीं पढ़ी, तो फिर मुझे रिजल्ट बताना। क्यों सोगानी जी, सही है ना? क्यों, हम जानते हैं नहीं पढ़ी होगी, क्यों? वो ऐसी अम्मा जी का नाम लिखा है जो 90 वर्ष की हो गई है और वो ऐसी हो रही है, चल नहीं पाती, खड़ी नहीं हो पाती, बड़े नहीं पढ़ी लिखी है, वो बांट रही है, वो कहां से पढ़ा होगा उसने? कि हमारे विद्यार्थी ने समझा दिया होगा कि अच्छी किताब है अम्मा जी, बंटवा दो, बंटवा रहा है खत्म। देखो सादृश्य अस्तित्व कहां हम अपन पढ़ रहे हैं, सादृश्य अस्तित्व अर्थात एक सा होना, एक से होने में भी जगत में एक है ऐसा व्यवहार किया जाता है। हम सभी एक जैन एक हैं, हम में भी जैनत्व की श्रद्धा है और आप में भी जैनत्व की श्रद्धा है। इस प्रकार हम कहना तो यही चाहते हैं कि हम सब एक से हैं, परंतु सादृश्य अस्तित्व की लोक में ऐसी भाषा है कि उसे एक हैं ऐसा ही कहा जाता है, क्योंकि यदि एक सा ऐसा लगते कहते हैं तो उसमें भेद नजर आता है, परंतु हमें एक कहने में एकता नजर आती है, क्योंकि हम एक से कहेंगे तो उसमें कुछ न कुछ गड़बड़ है ऐसा लगता है। क्या एक ही है ना, एक से काय के हैं, समझिए ना, ये भाषा ऐसी प्रचलित हो गई लोग में। अब हमको ना तो भाषा सुधार सकते हैं, ये भी आप समझ लो कि अब आचार्यों ने लिखी 2000 वर्ष पहले लिख दी, सब आचार्यों ने ऐसा क्यों लिखा, तो हम अपनी बुद्धि से थोड़ी अकल जैसी बन चलेगी बताएंगे कि इसलिए लिखा होगा, इसलिए लिखा होगा, नहीं साबित तो ठीक नहीं, तो क्या करें, क्या करें। अब जो 2000 पहले लिखी गई हम उसमें बदल तो नहीं सकते, हम उसका अर्थ ऐसा कर सकते हैं, समझना मैं क्या कह रहा हूं, हम टीका कर सकते हैं, टीका माने टीका टिप्पणी में नहीं, माने उसका अर्थ ये है, यहां पर हम ये आपको बता सकते हैं, ये हम लिख भी सकते हैं, लेकिन वहां यदि एक है लिखा है तो हमको एक है ही लिखना पड़ेगा, इतनी ईमानदारी हम सबको चाहिए, अन्यथा ये भगवान महावीर की वाणी है, फिर हम ये नहीं कह सकेंगे वहां से, लेकिन ये ईमानदारी कुंड कुंड से लेके आज तक निभाई गई है, तब हम कह सकते हैं कि ये बात हमारी भगवान महावीर की बात है, समझ रहे हैं ना। अब बताते हैं ना, भूल रो जाना गुरुदेव के प्रश्न में आता कि ये अर्थ नहीं है, यहां इस अर्थ में ये बात कही है, वहां इस अर्थ में ये बात कही है, वहां इस अर्थ में, जो हम ऐसा आपको अंतर अंतर बताते हैं ना कि देखो इसमें ये फर्क है, ये फर्क है, जैसे अभी आएगा, अभी वो आएगा प्रकरण के जो दो है ना, दो दो प्रकार के भेद है ना, एक वो बोलते हैं जिसमें वो लगता है ना, भिन्नता, पृथकता और अन्यता है ना। तो अन्यता का एक द्रव्य की गुण में, पर्याय में, दो गुणों में, परस्पर में, इनमें अन्यता लगती है, वो दो द्रव्यों के बीच में पृथकता लगती है। ये सब परिभाषा पढ़ी, इसमें लिखी है, कुंद कुंद ने लिखी, अमृतचंद ने लिखी, और हम ने भी तुम्हें बताई, और हम सबके सब फिर अन्यता की जगह एक भिन्नता, भिन्नता की जगह अन्यता ठोकते हैं, लिखते हैं कुंद कुंद भी, कुंद कुंद में भी मिल जाएगा ऐसे प्रयोग, क्या करें बोलो, समझ नहीं। परमात्मा क्या कह रहे हैं, हमारा तो हम सुधार देंगे, लेकिन कुंद कुंद का क्या करेंगे 2000 वर्ष पहले। यदि हमने ये अधिकार दिया किसी को कि लिया सुधारने का, तो सारी जनमानी अप्रमाणिक हो जाएगी। इसलिए हमको अपनी जिम्मेवारी से ही ये समझना पड़ेगा, लिखा होगा एक से एक, मानना पड़ेगा एक से, क्या एक से का तो ऐसा अर्थ नहीं होता, होता है कि नहीं होता हम कुछ नहीं जानते, बस तो अब यहां तो ये है बस। यदि ये समझना हो तो समझो, नहीं तो नहीं समझना हो तो नहीं समझो, कोई तर्क नहीं, कोई युक्ति नहीं, ख्याल में है ना। वो स्वरूप यहां पर हमें अपने ध्यान में रखना पड़ेगा, जिनमानी पढ़ना है तो। मेरे को दिक्कत आई जब मैं 12 भावना लिख रहा था, तो संवर भावना, मैंने सुना कि संवर भावना का तो कल टीवी पर एक शिव मुनि है सीतांबरों में, बहुत बड़े हैं, माने जाते हैं, अच्छे वक्ता हैं, टीवी पर संवर भावना समझा रहे थे, तो ये अपने छंद बोल रहे थे, देह देवल में रहें बस देह से जो भिन्न है, हे राग जिसमें किंतु जो उस राग से भी है। तो कल एक भाई आए थे मेरे पास, ताराचंद जी, आपका क्या नाम है उनका भैया, हैं अनिल जैन कोई करके कोई भाई आए थे, तो उनने टीवी पे सुना था, तो वो अपने मुमुक्षु थे और वो थोड़े अभ्यासी थे, तो वो मुझे बता रहे थे कि साहब बिल्कुल सही अर्थ कर रहे थे, जैसा आपने किया है पूरी। और उनको एक ही दिन नहीं, ये तो समर भावना अपन ने आज सुन ली, ये तो पूरे 12 भावनाओं पर ही प्रवचन चल रहे हैं टीवी पे उनकी, और हमने नहीं चला, और उनके चल रहे 12 भावना, पहली भावना से लेकर अपनी ही 12 भावना पे हैं। क्यों जी, अन्ना जी की उसमें तो नहीं आ गए थे मैं आपको बता रहा हूं, ये भावना मैं लिख रहा था, तो मैंने बहुत माथा मारा, फिर मैंने कहा देह देवल में रहे पर, ठीक हो गई यहां तो बात, यहां तो ठीक हो गई ना, क्योंकि देह जुदी है और आत्मा जुदा है तो भिन्न है। फिर हे राज जिसमें, वहां लिखा ना राग से अन्य बताया और भेद से भिन्न बताया, मतलब भेद से भी आएगा गौरव, पर से बताया भिन्न और राग से बताया अन्य, पर ऐसा नियम है। अब आगे चली गाड़ी, गुण भेद से, अब देखा भिन्न क्यों आगे, अब गुण भेद तो पर्याय है, तो उसमें तो अन्य होना चाहिए, समझ आ रहा आपकी कि नहीं आ रहा, कि जो आप इसमें हमने पढ़ा रहे हैं आपको और हमें ही लिख रहे हैं, गुण भेद से भी भिन्न है, पर्याय से भी पार है, तो अन्य लिखने में क्या तकलीफ थी। तो 6 दफे लिखा अन्य, तो 6 दफे काट के भिन्न किया, फिर भिन्न से अन्य किया, अन्य से भिन्न किया, मन भरे ही नहीं, क्या लिखे, क्यों कि अभी हम बन तो अन्य ही लिखेंगे, क्योंकि अन्य ही है, क्या गुण भेद से भी अन्य है, कोई दिक्कत तो है नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। फिर आगे जाते हैं तो फिर तकलीफ खड़ी होती है, मैंने कहा भैया ये निभेगी नहीं, तो यहां पर जो अलंकार होता है क्या अनुप्रास अलंकार, तो उसे क्यों हम तोड़े, क्यों गुण भेद से जो भिन्न है, एक कहने में जो अनुप्रास हो गया ना, भेद और भिन्न, अन्य में नहीं होता वो, भेद से भिन्न बोलने में अनुप्रयास मतलब एकदम अच्छा लगता है, सरलता से भेद से भिन्न पे चले जाते हैं, और अन्य कहने में थोड़ी जवान को तकलीफ होती है उच्चारण में, समझे ना आपकी में। तो फिर कहते तो अपन तो भिन्न ही रखो, क्योंकि आगे निभेगी नहीं है, तो भिन्न रख लिया। बोलो क्या करें, अब हमें ही पढ़ा प्रयत्न साल में कि उनमें अन्न होता उनमें भिन्न होता, तुम पूछते ही नहीं हो, फिर हम ही प्रश्न करते हैं कि उसमें ऐसा लिखा तुमने ऐसा क्यों लिखा, फिर हम ही जवाब देते हैं। क्यों समझ रहा है ना कि मैं ये कह रहा हूं कि कुंद कुंद से लेकर सभी ने इसका कड़काई से पालन नहीं किया। क्या कर हमारे घर घर में ये हालत है, घर घर में क्या हालत है कि साहब ये पिताजी को दादाजी कहते हैं, ये पिताजी को काका जी कहते हैं, ये पिताजी को भाई साहब कहते हैं, अरे ये जानते नहीं है कि हमारे पिताजी हैं। पिताजी कहने में शर्म आती है, शर्म वरम तो नहीं आती है, लेकिन जन्म से ही भाई साहब कहते आए, जन्म से ही दादाजी कहते आए है? कोई बाप को बाप कहता ही नहीं। अब करवा लो आप ठीक, सारे हिंदुस्तान को ठीक करवा दो कि तुमको ही ठीक होना पड़ेगा। क्या कि हम भाई साहब कहेंगे तो तुम समझना पिताजी की बात कर रहे, हम दादाजी कहेंगे तो तुम समझना पिताजी की बात कर रहे, समझे ना। हम कुछ भी कहेंगे, काका जी कहेंगे तो तुम पिताजी की बात समझना, है कि नहीं। तो हम बिल्कुल कोई बराबर हर जगह समझते हैं कि नहीं समझते हैं, एक एक घर का फर्क, मतलब दो चार का हो तो हमें याद कर लें, क्यों कि ये पिताजी को भाई साहब कहते हैं, ये पिताजी को भाई साहब कहते हैं। लेकिन ये तो जितने घर उतनी अलग परंपरा, दो घर में एक से नहीं मिलते। हम अपने पिताजी को पिताजी कक्का कहते थे, काका कहते थे, क्यों, क्योंकि हमारे पिताजी के जो बड़े भाई थे, चचेरे भाई, तो उनके बच्चे हमसे बहुत बड़े थे और वो हमारे पिताजी को सब काका जी कहते थे, तो उनकी सुन सुन के हम काका जी कहने लग गए और उनके बाप को दद्दा कहने लग गए। अब किसने किया, क्या किया, बोलो। लेकिन सब समझते थे हम कक्का कहेंगे तो ये पिताजी समझना, तो फिर यदि पिताजी को कक्का कहा जाता है तो फिर हम तो हमने कही तो हमारे बच्चों ने तो हमसे कक्का कही नहीं कभी, क्यों। फिर इनसे पूछो कि दादा क्यों कह रहे, हम इनके दादा हैं, क्योंकि हमारा ही छोटा भाई था ना, जो तुम लोगों ने देखा है बेचारा स्वर्गवास हो गया, वो हमको दादा कहता था, बड़े भाई के नाते बड़े भाई को दादा कहते हैं, जो पिताजी के पिताजी दादा वाला दादा नहीं, तो वो दादा कहता था तो उसे सुन सुन के ये लोग दादा कहने लगे, ये लोग ने दादा कहना शुरू किया तो सब विद्यार्थी दादा कहने लग गए, विद्यार्थियों ने शुरू किया तो सब मुमुक्षु कहने लग गए। अब तो देखो तो देश में विदेश में और ये प्लेन में बैठे हों ट्रेन में बैठे हों सब कहने लग गए, इन्हें कैसे पता चला, ये कैसे कहते हैं, बोलो बता सकते हो तुम, मेरी एक समस्या है, कैसे उनके दादा हम कैसे हो गए। तो वो क्या होता है कि तुम लोग हमको बैठाने जाते हो ना जो भी, तो जाते जाते कहते हैं दादा अच्छी तरह जाना, वो इतना सुन लेते हैं तो पूरा डब्बा दादा कहने लगता है। बोलो क्या कर रहे हो, टीटीआई भी दादा कहता है, मेरे कहने का अर्थ ये है कि ये जगत ऐसे ही चलता है, आपको अपने दिमाग में करेक्शन करना पड़ेगा, दुनिया में कोई करेक्शन नहीं हो सकता, समझ गए ना। क्या मतलब, हम एक कहेंगे हम सब एक हैं और तुम हम सब एक से हैं, ये समझना, समझ गए ना, ये साधु सरस्वती की बात चल रही है। चलो आप लोग समझते हो कि मैं यहां वहीं गप में लगाता हूं, मैं तो मुझे तो साध्य अस्तित्व समझाना है। यद्यपि हम सादृश्य अस्तित्व की अपेक्षा एक हैं, परंतु स्वरूपास्तित्व की अपेक्षा से हम किसी से भी एक नहीं है, माने अभेद नहीं है। फिर एक कहते हैं उसका मतलब अभेद ही होता है ना, अभेद के अर्थ में। यह सादृश अस्तित्व का जो कथन जनागम ने किया है वह स्वरूपास्तित्व को छोड़े बिना है, माने ये शर्त किसी ने लगाई नहीं है लेकिन प्रकृति से लगी हुई है। क्या क्या उसमें कि हमको स्वरूपास्तित्व से छोड़ना नहीं पड़ेगा और हमारे लिए हमारा स्वरूपास्तित्व ही मुख्य रहेगा। कहाँ पढ़ रहे थे नहीं? हमने अपनी मान्यता में उस स्वरूपास्तित्व को छोड़कर पर के साथ एकत्व स्थापित कर लिया है। यही मिथ्या दर्शन है, यही पर्याय मूर्ता है, यही पर समय बना है, मेरी तीसरी बात है। अब देखो पर्याय, देखो पर्याय में पर्याय पद्य मूढ़ा ही पर समय की बात चल रही ना, तो पर्याय में कहो ना तुम सबके है तो सबके साथ, पर के साथ भी है ना, लेकिन एक पर्याय का शब्द हमने मुख्यता से कह दिया, उसमें सब ले लेना, पर भी ले लेना, पर का द्रव्य ले लेना, पर का गुण ले लेना, पर की पर्याय ले लेना। और फिर जो पर्याय को भी अकेली मनुष्य पर्याय से जोड़ दिया, मनुष्य पर्याय से मने शरीर से बस। तो ऐसा लिखते हैं आचार्य खुद कि भले ही सारी पर्यायों पर कितने पर अन्य पदार्थों से हमारा एकत्व है, लेकिन जब जब उपदेश दिया जाता है तो ये मनुष्य आदि पर्याय से ही एकत्व छुड़ाने का उपदेश दिया जाता है। ये भावना में, एकत्व भावना में, अन्यत्व भावना में, ये शरीर में नहीं फलाना नहीं, इसकी क्या जरूरत है, एकत्व में एकत्व बताओ ना है? आप अकेला अवतरे मरे अकेला हो, इसकी क्या जरूरत है, हम अकेले मरते गए अकेले पैदा होते हैं, एकत्व भावना से इसका क्या लेना देना है। लेकिन ये इतना चल गया कि असली एकत्व गायब ही हो गया, वो समय सार में है ना, तम ए यत्त बेहत्तम दायेयम, वो एकत्व भावना का है और वो विभक्ति अन्यत्व भावना है। मैंने बारह भावना में लिखा है कि पूरा समय सार एकत्व और अन्यत्व भावना के लिए समर्पित है। अब वो हमारे दोनों ही भावनाओं की ये दुर्दशा हो गई कि एकत्व में तो बस अकेला जन्मते हैं, अकेला मरते हैं, फलाना अकेला अकेला खाते हैं, अकेले चलते हैं, अकेले पीते, क्या लेना देना इससे है? तुम अकेलेपन को अच्छा बता रहे कि बुरा बता रहे, कि यहां तो बुरा ही बताया जाता है, साथ होना चाहिए, अच्छा अकेलेपन अच्छा नहीं है ना, इसी अर्थ में रोते हैं ना, कोई साथी नहीं, कोई साथी नहीं, साथी सगा ना कोई। अरे साथी सगा नहीं है जी, अच्छी बात है ना, बहुत पहले मैंने लिखा था कि एकत्व तुम्हारा साथी है तो लो चलो आज चैतन्य राज आया ऐरावत हाथी है, ये ऐरावत हाथी आया है तुम्हें, तुम्हारा कल साहब से करेगा पांडुशिला पे ले जाकर के, अकेलापन है ये महासौभाग्य की बात है, कहना कोई जन्म हम अकेला जन्म अकेला मरा, तो क्या चाहता है, जन्म में भी कोई साथ देवे, मरण में भी कोई साथ देवे, एकत्व और अन्यत्व ये तो पर से भिन्नता और स्वामी अपनापन, ये असली वस्तु का स्वरूप है। पूरी एकत्व अन्यत्व भावना में पूरा समय साल लिखा जा सकता है वहां बनेगी, लेकिन वहां कोई बात ही नहीं आती, हजारों मैं कम से कम 150-212 भावनाएं तो मैंने पढ़ी हैं, कहां है क्या मिलती है, एक एक बताऊं मैं, हर पुराण में कोई भी मुनि दीक्षा लेगा तो 12 भावना भाता है, तो जिस कवि से जैसी बनती है वहां लिख देता है, हर हर परमाणियों के किताब में एक एक में चार मिल जाएंगी। लेकिन बस वही एक उन्होंने चल गया है? ये होता है, ये होता है, उसके उसके कितने पहलू हो सकते हैं, उस पर हम गंभीरता से विचार ही नहीं करना चाहते हैं। विगत गाथा में सादृश अस्तित्व अर्थात महासत्ता की अपेक्षा हम सब एक हैं, इस प्रकार पर पदार्थों से हमारा है का संबंध है, अस्तित्व का संबंध है, परंतु इसमें प्रत्येक का अस्तित्व पृथक पृथक है, यही स्वरूपास्तित्व है। इनका अब अलग अस्तित्व होना कभी मिलते नहीं है, ये स्वरूपास्तित्व है। विगत गाथा में द्रव्य की परिभाषा बताई गई है जिसमें यह स्पष्ट किया गया है कि अस्तित्व दो प्रकार का होता है, स्वरूपास्तित्व सादृश्य अस्तित्व। अब इस गाथा में स्वरूपास्तित्व का स्वरूप स्पष्ट करते हैं, एक चलाएंगे कल, आज तो हो गया ना समय, ये स्वरूपास्तित्व की बात ये कल करेंगे।